हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कबीर, मान लिया मैंने कि तुमने धोखा दिया मुझे। हमारे बीच जो भी था वो सब तुम्हारा रचाया नाटक था। सब झूठ हो सकता है, पर जो हमारे बीच हुआ उसे कैसे छुटलाओगे तुम? तुमने मेरे साथ रात गुजारी है और इस बात से तुम मुकल नहीं सकते। सृष्टि ने अपना आखिरी दाव चला। उसकी बात सुनकर कबीर ने नाटकीय अंदाज में याद करते हुए कहा, ओह, तो तुम तुम्हारी बर्थडे वाली रात की बात कर रही हो? हाँ, रात तो गुजारी थी हमने साथ, पर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? पहली बार किसी लड़के के साथ रात गुजारी थी क्या तुमने? वर्जिन थी जो मैंने तुमसे तुम्हारी प्योरिटी छीन ली, इसलिए इतना बौखला रही हो तुम? कबीर ने भौहें उचकाकर उसे देखा। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर सृष्टि शॉक्ड सी उसे देखने लगी थी। कबीर माधुरी को छोड़कर उसके जरा नजदीक आया और तिरछी मुस्कान लबों पर सजाते हुए व्यंग भरे लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, रोज का धंधा है ये तुम्हारा। अमीर लड़कों संग रातें गुजार कर उनकी फिजिकल नीड्स पूरी करना और बदले में उनसे अपना काम निकलवाना। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करने के इरादे थे तुम्हारे, याद नहीं तुम्हें? हमारी पहली मुलाकात में क्या कहा था तुमने मुझे? तुम तो शुरू से यही चाहती थी, तो एक रात मेरे साथ गुजार ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी मैंने कोई रेप तो नहीं किया था तुम्हारा, वो तुम थीं जो पहले खुद मेरे करीब आई थीं, मुझे इनवाइट किया था और सब शुरू भी तुमने किया था। तुमने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया, बात खत्म। और उस रात की तो बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी मैंने, याद नहीं? वो गिफ्ट्स, वो डेकोरेशन, इस हिसाब से तो हमारी फेयर डील रही, तो अब उस बात को उठाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कबीर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करते हुए, ऐसा घटिया खेल खेलते हुए? अपनी आंखों के सामने सब खत्म होते देखकर सृष्टि गुस्से से बौखला गई और कबीर पर चीखते हुए उस पर हाथ उठाना चाहा, पर कबीर ने बीच में ही उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया और जलती निगाहों से उसे घूरते हुए गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए। इतनी क्यों तिलमिला उठी तुम? तुम भी तो यही करती हो लड़कों के साथ। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम डिजर्व करती हो, इसलिए ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं। और शर्म की बात तो तुम करो मत, क्योंकि तुम जैसी बेशर्म, बेरहम, स्वार्थी, मक्कार, बच्चलन लड़की के मुंह से शर्म हया की बातें कुछ अच्छा नहीं लगती। वैसे अभी अपनी बेशर्मी का एक जबरदस्त नमूना दिखाऊं तुम्हें? कसम से बहुत पसंद आएगा तुम्हें, हमारा ब्रेकअप गिफ्ट। कबीर ने झटके से उसे खुद से दूर किया, जिससे सृष्टि गिरते गिरते बची। कबीर ने जेब से अपना फोन निकालकर उसमें कुछ किया और स्क्रीन सृष्टि की ओर घुमा दी। स्क्रीन पर उस रात की वीडियो चल रही थी। कबीर का किस के बाद जाना और उसके बाद दूसरे लड़के का उसके जगह आना, सब उस वीडियो में नजर आ रहा था। उसके बाद सृष्टि का उस लड़के पर हावी होना भी उसमें रिकॉर्ड था। सृष्टि फटी आंखों से उस वीडियो को देख रही थी जो इंटिमेट सीन पर आकर पॉज हो गई थी। उस वीडियो में सृष्टि की शक्ल साफ नजर आ रही थी। तुम जैसी लड़कियों को मैं मुंह लगाना भी पसंद ना करूं, तुम्हारे साथ रात बिताना तो भूल ही जाओ। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि उस रात तुम जिसके साथ थे वो मैं बिल्कुल नहीं था। कबीर के नफरत भरे शब्द सृष्टि के कानों में पड़े, पर उसने नजरें उठाकर उसे देखा तक नहीं, बस एक टक फोन की स्क्रीन को घूरती रही। उसे इस तरह देखकर अर्णव के दिल को सुकून सा मिल गया। वैसे में सृष्टि अवस्थी, कैसा लग रहा है प्यार में धोखा खाकर? इतना जलील होकर और अपने प्राइवेट लवी डवी मोमेंट का MMS बनते देखकर। अर्णव की आवाज़ कानों में पड़ी तो सृष्टि की निगाहें उसकी ओर उठ गईं। अर्णव बेहयाई से मुस्कुराया। सोचो, अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो क्या हो? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? तुम तो मॉडल बनने के ख्वाब देखती थीं, पर एक वीडियो तुम्हें एक पॉर्न आर्टिस्ट बना देगा। तुम्हारा करियर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। क्यों कर रहे हो तुम सब मेरे साथ ऐसा? किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? अब तक शांत खड़ी सृष्टि गुस्से से दहाड़ी। उसका सवाल सुनकर अर्णव की आंखों में खून उतर आया और गुस्से में उसकी बांह व माथे की नसें तन गईं। उसने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया और शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। आखिर सजा देने से पहले इंसान को उसका गुनाह तो बताना ही पड़ता है, पर अगर तुम चाहो तो इस सजा से बच सकती हो। अर्णव की ये बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। उसके सवाल को समझते हुए अर्णव मन ही मन अपने दिमाग पर कुटिलता से मुस्कुराया और अपना आखिरी दांव चल दिया। ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, मैं तुम्हें फैशन शो में पार्ट लेने की परमिशन दे सकता हूँ। इस वीडियो को भी डिलीट कर दूंगा और यहाँ जो बात बातें हुई वो यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगी। बस तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? सृष्टि भौं से कोड़कर शक भरी नजरों से उसे देखने लगी कि आखिर इन सब के बदले वो उससे क्या चाहता है। तुम्हारे पापा की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? अर्णव का सवाल सुनकर सृष्टि बुरी तरह चौंक गई। तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मेरे पापा की मौत से तुम्हारा क्या लेना देना है? वो जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दो और मैं तुम्हें वो सब लौटा दूंगा जो मैंने तुमसे छीना है। अर्णव ने सख्त लहजे में अपनी बात कही। वहीं उसकी बात सुनकर सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, मैं क्या तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ? नहीं बताती मैं कुछ। जाओ, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्णव ने उसका जवाब सुनकर खींचते हुए अपनी भौं को अपनी उंगली से मसला, फिर तेज कदमों से चलते हुए उसके पास आया और अपने पेंट में खौंसी गन निकालकर उसके सर पर पॉइंट कर दी। अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बताओ, कौन है तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार? सृष्टि उसके इस एक्शन से चौंक गई और साथ ही बुरी तरह घबरा गई। उसके चेहरे पर मौत का खौफ झलक रहा था। फटी आंखों से वो सहमी हुई सी अर्णव को देख रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। जवाब दो, वरना अभी के अभी 6 गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। अर्णव गुस्से से दहाड़ा और साथ ही ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ा दिया। ये देखकर सृष्टि की हवा टाइट हो गई। वो तुरंत ही घबराहट में बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे मारना मत, मैं सच बताती हूँ। उस दिन पापा, मैं और धृति मेला देखने गए थे। मम्मी की तबीयत खराब थी तो वो नहीं गई थी। मेले से लौटते हुए मैंने पापा से खिलौने की जिद की तो पापा खिलौना लेने लगे, पर तभी मेरी नज़र आइसक्रीम की रेड़ी पर चली गई। मैंने पापा को आइसक्रीम दिलाने कहा पर उनका ध्यान नहीं गया तो मैं खुद ही आइसक्रीम वाले के पास जाने लगी। वो रोड के दूसरे तरफ था। मैं पापा का हाथ छोड़कर रोड पर दौड़ गई, पर तब तक आइसक्रीम वाला आगे चला गया। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मैं मेन रोड पर चली गई थी। पापा मुझे रोक रहे थे पर मैं नहीं रुकी। रोड पर भागते हुए मैं एक गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी को तेजी से मेरे तरफ बढ़ते देखकर पापा ने घबरा कर मुझे दूसरे तरफ धक्का दिया और इसी चक्कर में वो दूसरी गाड़ी की चपेट में आ गए और उनके पीछे भागती धृति को भी चोट लग गई। सब मेरे वजह से हुआ, पर मैं डर गई थी इसलिए मैंने पूरा इल्ज़ाम धृति पर डाल दिया कि उसके वजह से पापा हमें छोड़कर चले गए। बस यही सच्चाई है। सृष्टि की जान हलक में अटकी थी और अपनी जान बचाने के लिए वो एक सांस में सब बोल गई थी। माधुरी ने उसके इकबाले जुर्म की वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली। अर्णव का मन तो किया कि उसे भून कर रख दे, पर उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए गन नीचे कर दी और नफरत भरी निगाहों से उसे घूरने लगा।
तुम्हारी जितनी घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। दिल तो चाह रहा है कि जान से मार दूं तुम्हें, पर इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। खैर, माना, बख्श दी मैंने तुम्हारी जिंदगी। फिलहाल तो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करने के लिए, इसलिए अभी मुझे जाना होगा। पर ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ से कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, इंतजार करना। और फैशन शो का लाइव टेलीकास्ट होगा इस बड़ी ही स्क्रीन पर। अच्छे से देखना, क्योंकि आज का फैशन शो तुम्हारे सपनों की अर्थी निकालने वाला है, जिसे तुम कभी नहीं भूल सकोगी। अर्णव ने गुस्से में जबड़े भींचते हुए कहा। वहां लगी बड़ी ही स्क्रीन भी दिखाई उसे, फिर वहां से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे कबीर और माधुरी भी निकल गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम दोनों फैशन शो की जिम्मेदारी संभालो, मैं धृति के पास जाता हूँ। और माधुरी, ये वीडियो उसकी माँ तक पहुँचा देना। अर्णव के ऑर्डर पर दोनों ने सर हिलाया, क्योंकि अब फैशन शो शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं था। अर्णव भी धृति वाले चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। धृति इस वक्त उस चेंजिंग रूम में अकेली थी। सारे मॉडल्स स्टेज के बैक साइड जा चुके थी। धृति भी जाने के लिए निकल ही रही थी कि अर्णव वहां पहुंच गया। अर्णव को वहां देखकर धृति चौंक गई। वहीं अर्णव उसके बगल से निकलकर अंदर चला गया। ये देखकर धृति और भी ज्यादा हैरान हो गई और सर घुमाकर आंखें बड़ी बड़ी किए अचंभित सी उसे देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड।